ओम शांति। तो आज सभी ने बाबा की मुरली सुनी है, तो मुरली में आप लोगों ने आज क्या विशेष पॉइंट जो आपकी बुद्धि में याद रहा, जो करने की प्रेरणा मिली, वो आप सभी बताएंगे। तो क्या क्या ऐसे पॉइंट जो आपको बुद्धि में टच किए हैं, जो दिल से लगे हैं, ऐसे पॉइंट्स आप सब बताएंगे। एक एक पॉइंट तो कम से कम जरूर बताएं, क्योंकि बाबा के घर में आप आए हैं, परिवर्तन भूमि इसको कहते हैं, तो यहां से कुछ न कुछ ऐसी चीज धारण करके जानी है, कुछ ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स लेके जाने हैं जो हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार बन जाए। तो सभी एक एक पॉइंट अवश्य सुनाएंगे। हाँ, तो शरीर का भान तोड़ना है और थकते क्यों हैं? जब देहाभिमान का तूफान आता है, माया का तूफान आता है, तो थक जाते हैं। और थकावट कैसे दूर होगी? जब देही अभिमानी बनेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। तो कोई थका हुआ तो नहीं है ना, सभी फ्रेश हैं। हाँ, तो एकदम फ्रेश रहना है, और यहाँ पर आए ही है रिफ्रेश होने के लिए। और हाँ, तो जब अनुभव का स्वरूप बनेंगे तो कुछ नसीबी की झलक जो है चेहरे से दिखाई देगी। और तो लेकिन बाबा ने कहा, भले 8 घंटे अपना धंधा धोरी करो, 8 घंटे आराम करो, लेकिन 8 घंटे बाबा की याद करनी है। तो बाबा की याद अभी से जब अभ्यास करेंगे तभी लास्ट में 8 घंटे तक पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि लास्ट में अपने आप 8 घंटे हो जाएंगे। यदि अभी अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट में तो 1 सेकंड भी याद नहीं आएगी। तो इसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। बाबा कहते याद का लंबे काल का अभ्यास चाहिए, तभी लास्ट में जो बाबा कहते 8 घंटे की याद या निरंतर याद वो रह सकेगी। तो परिवर्तन किस किस का करना है? किस किस का परिवर्तन करना है? हाँ, कोई अपकार करता है तो उसको उपकार में, और हाँ नहीं, और किस किस का परिवर्तन करना है? और बाबा ने विशेष रूप से 3 पॉइंट्स बताई है। कोई स्वभाव संस्कार यदि विघन डालता है उसके द्वारा, तो उसको कैसे संस्कार परिवर्तन कर देना है? तो स्वभाव संस्कार रहम दिल का धारण कर लेना है बाबा की याद से। और तीसरा, यदि कोई दैहिक दृष्टि वाला आता है तो उसको आत्मिक दृष्टि से रूहानी स्नेह दे करके परिवर्तन कर देना है। तो जब ऐसा परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद ही लोग आपको शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया करना अर्थात दिल से दुआएं देना, आपको महान स्वीकार करना, आपको अपना इष्ट देव या अपना पूजनीय मानना, ये शुक्रिया करने का मतलब है। और धन का लालच नहीं रखना है, टू मच में नहीं जाना है, क्योंकि आजकल मनुष्य धन के पीछे टू मच में चले जाते हैं, और टू मच में गए तो फिर ज्ञान योग सब चौपट हो जाता है। तो टू मच में नहीं, किसी भी चीज के टू मच में नहीं जाना है। इसलिए क्या कहते हैं, अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती है, तो अति अंत का कारण बनती है। और बाबा ने क्या सुनाया, दुनिया कब्रिस्तान बन गई, पुरानी दुनिया से दिल हटानी है। हाँ, तो रात के राही थक मत जाना। तो हम रात के राही हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं, और घर से फिर अपनी राजधानी में आएंगे। तो राजधानी में आने के लिए कैसा लक्ष्य रखना है? बाबा ने क्या बताया, राजधानी में कहाँ आना है हमको? सूर्यवंशी राजधानी में। तो मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है और सूर्यवंशी राजधानी में आना है। बाबा ने बोला चंद्रवंशी में भी नहीं, चंद्रवंशी में भी दो कलाएं कम हो जाती है, सतो प्रधान की बजाय वो सतो हो जाती है। तो पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है। हाँ, तो हमें मजबूत बनना है, लेकिन मजबूत कैसे बनेंगे? जब हमारा ज्ञान योग अच्छा होगा तो ज्ञान योग से अपने आप को मजबूत बनाना है, निश्चय बुद्धि बनना है। और बाबा ने बताया क्यों क्यों हिल जाते हैं हम, क्यों गिर जाते हैं, उसका कारण क्या बताया? देह अभिमान। देह अभिमान आ जाता है, हमको अहंकार हो जाता है, तो रूठ पड़ते हैं और रूठने से 21 जन्मों के तकदीर को लकीर लगा देते हैं। तो रूठने से किसका नुकसान है? हमारा अपना ही नुकसान होता है। तो बाबा से रूठेंगे या बहनों से रूठेंगे उसमें उनका नुकसान नहीं है, हमारा अपना नुकसान है। तो हमें अपना नुकसान करना है कि फायदा करना है? हम बाबा के पास किस लिए आए हैं? फायदे के लिए। तो जब बाबा ने बताया देखो शिव बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी, और आते कैसे साधारण तन में है, कैसे साधारण घर में है, और सारे संसार को परिवर्तन का कार्य कौन करते हैं? बाबा। सृष्टि को स्वर्ग बनाने का कार्य बाबा करते हैं। सबसे अधिक हम सबकी मदद कौन करते हैं? बाबा। लेकिन बाबा को फिर भी कोई भी अहंकार नहीं होता। हाँ, तो बाबा ने बोला कोई भी अहंकार अपना नहीं रखना है, तो बाबा समान निरंकारी बनना है। और जो हम सोचते हैं हमारे वारिस आगे चलेंगे वो हमारे काम आएंगे, तब ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि सब विनाश होने वाला है। लेकिन विनाश के पहले हमें अपनी तैयारी करनी है। कौन सी तैयारी करनी है? कौन सी तैयारी करनी है? घर कैसे जाएंगे? पावन बनकर। और पावन कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। तो बाबा की याद से पावन बनकर के घर जाना है, और फिर क्या करना है? ज्ञान की धारणा जितना हम करेंगे, फिर उस आधार से नई दुनिया में आकर के हम पद पाएंगे। तो ज्ञान की धारणा के आधार से पद मिलेगा और याद के आधार से पावन बनेंगे। तो हमें पावन भी बनना है और पद भी पाना है। तो पद का पुरुषार्थ यहां पर ही करना है, इस शरीर में रहते हुए करना है। तो उसके देह अभिमान को भी छोड़ना है, बाबा की सेवाओं कार्य में हाथ भी बटाना है और दूसरों को बाबा के ज्ञान भी सुनाना है। तो जितना ज्ञान सुनाएंगे, बाबा के कार्य में उनको मददगार बनाएंगे, तो उतना आपका पुण्य खाता जमा होगा। तो अभी जमा का बैंक खुला है, फिर कभी बैंक ये नहीं खुलता। उसके बाद सिर्फ आपको खाना है, ये जितना जमा करना चाहो अभी कर लो, अभी सिर्फ बैंक खुला हुआ है। और ये बैंक ऐसा है जिसमें कभी भी लॉस नहीं होता, कोई डूबता नहीं है बैंक। दुनिया के बैंक तो डूब जाते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं डूबते। और जो कल एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि ज्ञान में आने के बाद विघ्न आते हैं तो ऐसा क्यों होता है, तो आज बाबा ने उसका आंसर दे दिया। तो बाबा ने बता दिया कि जब समस्याएं आती, देवाला मारते तो क्या करते? बाबा को भूल जाते हैं। और बाबा को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या विघ्न खत्म होंगे कि बढ़ेंगे? तो फिर विघ्न बढ़ेंगे ही। तो इसलिए बाबा की याद कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं भूलना है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। अभी समझो कोई बाढ़ में डूब रहा हो तो तैरने वाले का हाथ पकड़ करके पार हो जाएगा, और यदि वो सोचे मैं क्यों इसका हाथ पकड़ू तो डूबेगा कि तैर पार हो जाएगा, तो और भी डूब जाएगा। तो ऐसे जब हमारे सामने बातें आती, समस्याएं आती है, तो हमको बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है और अधिक दिल से बाबा को याद करना है। और जितना दिल से बाबा को याद करेंगे उतनी बाबा की मदद मिलेगी, और जितनी बाबा की मदद मिलेगी उतना हम पार हो जाएंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ कौन है? शिव बाबा। और जो हमारा साथी है, हमारा अपना है, उस पर हमारा अधिकार है। तो उस पर अधिकार भी बढ़ाना है और उस पर निश्चय भी बढ़ाना है, उसको अपना भी बनाना है और उससे अपने कार्य भी करवाने हैं। ऐसे नहीं कि अपना बना लिया बस साइड में रख दिया, नहीं, उसको यूज भी करना है। कोई बात आए, बाबा ने मुरली में क्या कहा है, बाबा को बुलाओ, दिल से बुलाओ, अधिकार से बुलाओ, बाबा आओ मदद करो। तो जब ऐसे प्यार से बाबा को बुलाएंगे, निश्चय से बाबा को बुलाएंगे, तो बाबा निश्चित रूप से आकर के मदद करेंगे। और बाबा की मदद लेने की विधि क्या है? बाबा की मदद लेने की विधि क्या है? हिम्मत का एक कदम बढ़ाना। जब हिम्मत का हम कदम बढ़ाएंगे तभी बाबा की मदद मिलेगी, तभी पद्मों में, तभी कदमों में पद्मों की कमाई जमा होगी। तो हमारे हर कदम में पद्म की कमाई जमा हो रही है, लेकिन कदम तो हमको बढ़ाना पड़ेगा तभी कमाई होगी। यदि हम सोचे बिना कदम बढ़ाए कमाई हो जाए तो संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कदम तो हमको अवश्य बढ़ाना पड़ेगा। और बाबा ने बोला है कि श्रीमत का साथ लेकर के। कई बार क्या होता है, जब परिस्थितियां आती है तो मनुष्य इधर उधर सब तरफ हाथ मारना शुरू कर देता है। वैसे जब कोई डूबता है तो वही बहुत ज्यादा हाथ पैर हिलाता है, लेकिन जितना अधिक हाथ पैर हिलाता है उतना ही अधिक और डूबता है। यदि उसमें बिल्कुल निश्चिंत होकर के आदमी लेट जाए तो भी पार हो जाता है, क्योंकि डूबने का सिस्टम वही हो कि जितना अधिक हाथ पैर मारेंगे उतना अधिक डूबेंगे। मरा हुआ व्यक्ति कभी डूबता है? कभी नहीं डूबता। इसलिए तैरने की उसमें एक और विधि सिखाते हैं कि आप मरे हुए व्यक्ति के जैसे लेट जाओ। कैसे भी लेट जाते हो, दोनों तरह से लेटते हैं, जो तैरने वाले होते हैं उनको सब उसका ज्ञान रहता है। तो लेकिन होता क्या है कि जब हम और अधिक फास्ट अपने हाथ पैर चलाने लगते हैं, हम बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो पाते, तो और अधिक डूब जाते हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति समस्याएं आती तो हम अपने दिमाग को बहुत चलाते हैं, जितना अधिक दिमाग चलाते हैं उतने उलझते जाते हैं। और उलझ करके क्या होता है, जैसे मकड़ी अपना जाला बना के खुद ही उसमें फंस के मर जाती है, तो ऐसे हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं और फिर दोष बाबा को देने लगते हैं कि बाबा ने मदद नहीं की। बाबा कहते हैं कि बाबा तो इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे मुझे यूज करे, तो हजार भुजाओं वाला साथी है। तो अधिक हाथ पैर नहीं मारने, अपनी बुद्धि को मन को बाबा के ऊपर सौंप देना है, समर्पित कर देना है। तो बाबा के ऊपर समर्पित करोगे, अपने मन बुद्धि को शांत करोगे, बाबा की याद में रहोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली टच होगा। टच होगा ऐसे करो, यहां जाओ, ये करो, तो आप सेफली उस परिस्थिति समस्याएं से बाहर निकल आएंगे। आप लोगों ने वो अनुभव सुना होगा, भोपाल गैस कांड वाला। तो जब भोपाल गैस रिसाव हुआ गैस का वहां पर, तो सब लोग इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। बहने बाबा की याद में, बाबा कमरे में बैठ गई, बाबा को याद करने लगी, क्या करें? सब बाबा के ऊपर सौंप करके बाबा की याद में बैठ गए। तो बाबा ने टच किया कि सभी खिड़की दरवाजे खोल दो, पंखे सभी फुल स्पीड में चला दो और आप रजाई ओढ़ करके लेट जाओ। बाकी इधर उधर भागने वाले सब मर गए और बाबा के बच्चे सब बच गए। उनको कुछ भी नहीं हुआ। किस आधार से? बाबा की याद से, क्लीन क्लियर बुद्धि के आधार से। जब हमारी क्लीन क्लियर बुद्धि होती है, बाबा की याद में हम एकाग्र होते हैं, तो हमको टच होता है कि क्या करना है, तो उस आधार से हम सेफ हो जाते हैं। जैसे बाबा के कई बार मुरलियों बताते हैं कि बिल्ली के बच्चे कैसे सेफ हो गए, जैसे बिल्ली के बच्चे उसके आग के अलाव में भी सेफ रह गए, ऐसे जब आप बाबा की याद में रहोगे, संसार में भले ही विनाश की ज्वाला प्रज्वलित रहेगी, वहां विनाश होता रहेगा, बड़े बड़े विघ्न समस्याएं आती रहेंगी, लोग उनमें उलझ करके मरते रहेंगे, लेकिन आप बाबा की याद में बिल्कुल सेफ रहेंगे। जब एक सुनामी आई थी उसमें भी ऐसा ही बाबा ने कहा था कि जो बाबा की याद में ऐसी स्थिति में स्थित होंगे उनको ही बाबा की टचिंग होगी, वही प्राकृतिक आपदाओं में सेफ रहेंगे। तो हमें अपने अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाना है। देही अभिमानी अपने आप को बनाते जाना है, अपने अहम को, अपने अहंकार को तोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। कि सबसे बड़ी रुकावट कहो या विघ्न कहो, अहम का या अहंकार का ही आता है। यही हमको कोई भी कार्य करने से रोकता है। तो कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने से हमको रोकने वाले इस देह अभिमान को, इस अहंकार को छोड़ते जाना है, देही अभिमानी बनने की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते जाना है। क्योंकि लास्ट में हमको क्या बनना है, हम कौन हैं? कौन है हम कौन हैं? पहला पार्ट क्या है? आत्मा। और हमको बनना क्या है? हमको आत्मा ही बनना है। घर में कौन जाएंगे? आत्मा ही जाएगी घर में। तो जो हम थे, जो हम हैं, हमको वही होना है। ये तो आज हमने अलग अलग चोले धारण कर लिए, अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में सोचने लगे, उसमें ढाल लिया है, लेकिन वास्तव में हम कौन है? आत्मा। और हमको आत्मा ही होना है। जो हम हैं वही होने में डिफिकल्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमको डिफिकल्टी है। क्यों? कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो जो हम हैं उसी को ही याद रखना है, वही हमें होना है, और वही होकर के हमको अपने घर परम धाम जाना है। उसी के आधार से हम बाप समान बनेंगे। और जो हमारी ओरिजिनल गुण और क्वालिटी है, आत्मा के ओरिजिनल गुण क्वालिटी कौन कौन से हैं? ज्ञान, प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद, सुख, शक्ति। तो ये सब जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, वो किस आधार से प्रकट होंगे? जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होंगे, उसकी स्मृति में रहेंगे। अंतिम पेपर भी क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो किसकी स्मृति? स्वयं की स्मृति। और स्वयं की स्मृति के आधार से फिर प्राप्तियों की स्मृति, कर्तव्यों की स्मृति, अपने स्वमान की स्मृति, अपने पिता की स्मृति, अपने घर की स्मृति, अपनी नई राजधानी की स्मृति। तो आज बाबा ने क्या बोला है, किस किस को याद करना है? बाबा ने बोला बाबा को याद करना है और घर को भी याद करना है। बाबा को घर में ही याद करना है। क्यों? कि घर का भी वर्षा मिलना है। घर का वर्षा क्या है? शांति और शक्ति। परमधाम में हम शांत और शक्तिशाली रहते हैं, पवित्र रहते हैं। तो ये घर का वर्षा है शांति, शक्ति, पवित्रता। तो ये वर्षा बाबा से हमको बाबा की याद के आधार से और घर की याद के आधार से मिलेगा। और फिर हमको जब नई दुनिया में आना है, उसका वर्षा ज्ञान की धारणा के आधार से क्या मिलेगा? दैवी गुण। जो दैवी गुण और सर्वशक्तियां हैं वो भविष्य में काम आएंगी। तो बाबा को भी याद करना है, घर को भी याद करना है, नई राजधानी जो हम जहां पर हमको जाना है उसको भी याद करना है। तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। और देवता में ऑब्जेक्ट क्या बताते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जैसा बनना। और श्री लक्ष्मी श्री नारायण की विशेषता क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये जो उनकी क्वालिटीज है वो भी हमको धारण करनी है, क्योंकि हमको उनके समान बनना है ना, और हमको शिव बाबा के समान भी बनना है। और शिव बाबा की क्वालिटी क्या है? ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर और विश्व कल्याणकारी, मुक्तिदाता, सदगति दाता, हाँ जी, पतित पावन, दुखहर्ता सुखकर्ता, स्वर्ग का रचिता, प्रेम का सागर, दया का सागर, शक्ति का सागर, शांति का सागर। और शिव बाबा की महिमा सुनाओ, हमारे बाप है ना, तो बाप की महिमा करोगे तो वो महिमा तभी तो हमारे अंदर आएगी। भक्ति में कितनी महिमा गाई है, तो महिमा करेंगे तो महिमावान बन जाएंगे। तो गाओ एक एक महिमा सब शिव बाबा की, बताओ एक एक सब शिव बाबा की महिमा बताएंगे, बताइए। शक्ति का सागर है और हाँ विश्वनाथ है, पारस बुद्धि बनाते हैं, हाँ जी, हाँ हमको हमारे सभी विकर्मों को बुराइयों को धुलाई कर करके पावन बना देते हैं, इसलिए शिव बाबा धोबिया कार्य करते हैं, सोनार का कार्य भी करते हैं, आत्मा सारी कट निकाल देते हैं। शिव बाबा त्रिमूर्ति शिव, और क्या है, सभी बोलेंगे ऐसा नहीं। हाँ शिव बाबा कौन है? बाप, शिक्षक, सतगुरु और शिव बाबा। और कौन कौन क्या क्या कार्य करते हैं? हाँ शिव सर्जन है और दुखहर्ता सुखकर्ता है, सीताओं के राम है, और नरक को स्वर्ग बनाने वाले हैं, भोलेनाथ है, प्राणेश्वर है, पाप कटेश्वर है और हाँ भोलानाथ हो गया है, और हाँ बागवान है, और कौन है? आज बाबा ने मुरली में क्या बताया? निरंकारी है, निर्विकारी है, फिर बाबा के ऑलवेज वो तो संपूर्ण पावन है, सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है। और जब मनुष्य किसी के पास अथॉरिटी आ जाती तो ऑटोमेटिकली उसका अहंकार बढ़ जाता है। और सर्वशक्तिवान की विशेषता या निशानी ही यही है कि हमारे पास सर्वशक्तियां हो, हम सर्वसमर्थ हो, उसके बाद भी हमको अहंकार ना आए। और शिव बाबा की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सर्वसमर्थ है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन सबसे अधिक निरंकारी भी वही है। इसलिए शिव बाबा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का मतलब यह है कि अपनी सर्वशक्तियों पर कंट्रोल रखना। सर्वशक्तियों पर कंट्रोल रखने का मतलब है कि जब जिस शक्ति की आवश्यकता वो शक्ति हाजिर हो जाए, और जब जिस शक्ति को हमको यूज नहीं करना वो मर्ज हो जाए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जहां समाने की शक्ति की आवश्यकता होती वहां सामना करने लगते हैं, और जहां सामना करने की शक्ति की आवश्यकता होती है वहां सहनशील बन जाते हैं। तो कब किस शक्ति को कहां यूज करना है, किस विधि किस आधार से यूज करना है, ये हमको बाबा राजयोग के आधार से सिखाते हैं। क्योंकि बाबा उसमें सर्वसमर्थ है, निपुण है, एक्सपर्ट है, हमको भी उसमें एक्सपर्ट बना रहे हैं, तभी हम बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। क्योंकि बाबा को तो कर्मेंद्रियों पर जीत पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कर्मेंद्र से नारा है, न्यारा है, लेकिन हमको अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाना होता है। बाबा भी तो परमात्मा है ना, बाबा के पास भी तो मन बुद्धि संस्कार सब है ना कि नहीं है? है। बाबा के पास भी मन बुद्धि संस्कार है। बाबा के संस्कार कौन कौन से है? ज्ञान देने के, प्यार करने के, रहम के, विश्व कल्याण के। और बाबा की बुद्धि तो ऑलवेज संपूर्ण पावन है, तो क्लीन क्लियर है ही है। बुद्धिवानों की बुद्धि है तो सबसे अधिक संसार में सर्प बुद्धि बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? एक शिव बाबा। एवर प्योर है, और बाबा हमको भी अपने समान बना रहे हैं। तो अपने समान बना रहे हैं तो वो सब क्वालिटीज हमारे में भरेंगे ना, और अभी हमको भरनी है। तो हमको भी बाबा के समान अपनी बुद्धि को बनाना है, अपने मन को बनाना है, अपने संस्कारों को बनाना है, अपने मन बुद्धि कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल ला करके अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना है। तब तो बाप समान बनेंगे ना, ये तो ऐसे कहने से थोड़े बनेंगे। जब हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर हमारा कंट्रोल होगा तो कर्मेंद्रियों पर अपने आप कंट्रोल होगा। तब जो अहंकार या अभिमान आता है शक्तियों का, प्राप्तियों का, अथॉरिटी का, फिर नहीं आएगा। कहीं क्या बोलते, हमने इतने पढ़ाई की है, हम इतने ज्ञानवान हैं, हम इतने पुराने हैं, हमारे इतने सेंटर है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, वैरायटी अभिमान आ जाता है। और बाबा का तो पूरा संसार ही है, सारा संसार किसका है? बाबा का है। तो हम छोटे से उसमें बोलते चूहे को मिली हल्दी गांठ पंसारी अपने आप को समझ बैठा, हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो हमको भी कहां जाना है? बेहद में जाना है, बाबा के समान, बाबा के समान बेहद में जाना है, बेहद का बनना है, हदों में नहीं आना है। मेरा मेरा करने की बजाय सब कुछ तेरा कर देना है। तो तेरा कर देना है, बाबा का इतना बड़ा परिवार, हमारा तो हमारा तो छोटा ही है। फिर भी बाबा ने बोला कि रावण का कितना बड़ा परिवार है? बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन रावण के बजाय सारा संसार ही बाबा का परिवार है। सब बाबा के बच्चे हैं, सभी आत्माएं किसके बच्चे हैं? बाबा के। इसलिए बाबा सदगति भी सभी की करता है, लेकिन खास भारत और उसमें खास हम बच्चे और आम पूरा विश्व। तो हम बाबा के इतने अधिक निकट है, बाबा के इतने अधिक प्रिय बच्चे हम हैं, तो हमको बाबा से उतना अधिक प्यार लेना है, बाबा से उतनी अधिक पालना लेकर के उनके समान बन जाना है, बाबा से उतनी अधिक शक्तियां सोम में भर लेनी है, ताकि पूरा कल्प हमारी वो शक्तियां चलती रहे। और वो समय अभी है, और उसकी विधि बाबा ने सब बता दिया है कि जब बाकी सब कुछ भूल करके एक बाबा की याद में मगन हो जाओगे तभी वो शक्तियां मिलेगी। नहीं तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, बुद्धि एकाग्र नहीं रहेगी तो शक्ति प्राप्ति नहीं होगी। टाइम तो बीत जाएगा, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, शक्तियां कितनी मिली, वो चेक करो, वो नहीं होगा। तो उसकी विधि है बाबा की याद में अपने आप को एकाग्र कर लेना। बाबा ने मुरली में बोला है, सब कुछ भूल जाओ जैसे कि मरे हुए हो, ऐसे बाबा की याद में एकाग्र हो जाओ। जब ऐसे बाबा की याद में एकाग्र हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे, तभी अवस्था मजबूत बनेगी। हाँ, तो बाबा ने बोला कि सन्यासी जब ब्रह्म में अपना ध्यान टिकाते हैं तो उनके शरीर छोड़ने के बाद भी सन्नाटा हो जाता है। तो जब हम बाबा की याद में इतना स्थित रहेंगे तो हमारे आसपास तो सन्नाटा रहेगा ही, लेकिन पूरे विश्व को भी शांति का दान मिलेगा। और जब हम ऐसी स्थिति में स्थित होकर शरीर छोड़ेंगे तो भी पूरे विश्व में एक शांति के वाइब्रेशंस जाएंगे। तो हमको ऐसी स्थिति में स्थित होना है, अपनी स्थिति ऐसी बना लेनी है बाप समान। उसके लिए बाकी सबसे बुद्धियोग हटा करके एक बाप पर अपने बुद्धियोग को स्थित कर देना है, स्थिर कर देना है। उसके लिए सबसे पहले आत्मा होने का अभ्यास करना है, सब कुछ बाबा पर सौंपने का अभ्यास करना है, बाबा पर समर्पित करने का अभ्यास करना है, और संपूर्ण निश्चय बुद्धि होने का अभ्यास करना है। जब बाप पर संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अपनी बुद्धि को चलाना फालतू बंद कर देंगे, तभी हमारी बुद्धि स्थिर होगी, शांत होगी, एकाग्र होगी। और जब हम जो हम कहते हैं कि हमको बाबा की याद में एकाग्रता नहीं आती, तो वह समस्या तभी समाप्त होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि इधर उधर बाहर बहुत बिखरी हुई है। उस बिखराव को खत्म कर करके, समेट कर करके, एक बाबा पर लाकर स्थिर कर देना है। सब कुछ बाबा को सौंप करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। बारह बाल धंधा धोरी करो, लेकिन टू मच नहीं, उसमें फंसो नहीं, कर्मयोगी बन के करो। कर्म किया और न्यारे, जैसे कछुआ कुछ कहा, उसको कार्य करना होता है, खाना पीना होता है, तो मुख बाहर निकालता है, जैसे पूरा हुआ फिर अंदर समेट करके बैठ जाता है। तो ऐसे हमको भी जितना आवश्यकता हो उतना सोचे, उतना करे, बाकी फिर शांति में बैठ जाए। जैसे बाबा ने संडे के मुरली बोला था, एक दो घंटे में, जैसे एक दो मिनट के लिए भी ऐसा ही स्थिति का अभ्यास करते रहे, तो एक एक रुपया जैसे जमा करते करते लाख रुपए हो जाते हैं। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी शांति इकट्ठी करती करती, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही स्थिति का अभ्यास इकट्ठा करते करते, हमारे को लास्ट में ऐसा ही स्थिति में स्थित कर देगा, संपूर्ण शांति की स्थिति में स्थित कर देगा। लेकिन इकट्ठा अब करना है। दुनिया में धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमको गुण और शक्तियों को, ऐश्वर्यपन को, शांति की शक्ति को इकट्ठा करना है। तो जब हमारे पास इकट्ठी होगी, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों को भी दे सकेंगे। तो हम दाता बनेंगे, तभी हम बाप समान पूजनीय बन पाएंगे। चेहरे से खुशनसीबी का अनुभव हुआ, क्योंकि दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेगी, खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी। ज्ञान गुण शक्तियों का दान करोगे तो ज्ञान गुण शक्तियां बढ़ेगी। दुनिया में धन देंगे धन घटेगा, लेकिन ये देने से बढ़ेगी। तो इसलिए इनका दान करते चलना है, अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल लेकिन लवफुल, डिटैच्ड, न्यारा भी रखना है, लवफुल भी रखना है, और प्यारा भी रखना है। ऐसे नहीं कि केवल हम पूरा डिटैच होकर के सबसे बैठ जाए, वो भी नहीं चलेगा। यहां पर बैलेंस सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बैलेंस ही ब्लेसिंग की कला लाती है। तो न्यारा बनना है तो प्यारा बनना है, ऐसा ही बनना है तो कर्मयोगी भी बनना है। ऐसा नहीं कुछ छोड़ देना है, घर को भी याद करना तो स्वर्ग को भी याद करना है, अपने को बाबा को भी याद करना है तो पूरे विश्व को भी सकास देना है। लेकिन बुद्धि कहीं भी नहीं उलझे, सब कुछ करते हुए सबसे न्यारे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सब कुछ करते हुए भी सबसे न्यारा। तो हमको भी ऐसे बाप समान बनना है, सब कुछ करके भी सबसे न्यारा रहना है। तो ऐसी स्थिति का अभी हम 5 मिनट अनुभव करेंगे। तो अभी आप लोग बैठेंगे बिल्कुल निश्चिंत एकदम, और कोई भी संकल्प नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाए, अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटा ले, और अपने आप पर, अभी आप इस हॉल में हो तो यहां पर ही अपनी बुद्धि को केंद्रित कर दे, बाकी और सभी संकल्पों से न्यारे। अपनी भरकुटी के बीच में देखें कैसे एक ज्योति बिंदु आत्मा सितारा चमक रहा है, वही हम आत्मा है, हमको वही बनना है। भरकुटी में देखिए चमकते ज्योति बिंदु आत्मा सितारे को, कैसे उससे प्रकाश की किरणें निकल निकल करके चारों ओर फैल रही है। शरीर से बिल्कुल डिटैच, एकदम शांत, जिससे प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। आत्मा सितारे से निकलती प्रकाश की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। आप बिल्कुल एकांत में बैठे हो जहां पर सिर्फ आप हो और आसपास कोई भी नहीं, सिर्फ आप अकेले। आपकी भरकुटी में चमकती आत्मा, उससे निकलकर फैलती चार ओर प्रकाश की किरणों को निहारते रहिए। देखिए कैसे धीरे धीरे प्रकाश की किरणें आपके शरीर के ऊपर पड़ रही है और आपका शरीर भी धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। धीरे धीरे आपका शरीर लोप होता जा रहा है, आपकी काया प्रकाश में परिवर्तित होती जा रही है। आपके अंदर प्रकाश भरता जा रहा है आत्मा का। आपके थोड़े से ऊपर ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे हैं। शिव बाबा किरणें आपके ऊपर पड़ रही है और आपसे पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे प्रकाश का शरीर भी गायब होता जा रहा है और आप सिर्फ एक ज्योति बिंदु आत्मा सितारा बच गए हो। ऊपर चमकते ज्योति बिंदु शिव बाबा, उनसे निकलती प्रकाश की किरणें जो आपके ऊपर पड़ रही है और आप एक ज्योति बिंदु सितारा बन चुके हो। धीरे धीरे ज्योति बिंदु सितारा ऊपर उड़ने लगा है बाबा के पास, बाबा की ओर, बाबा को जाकर के टच करता है और आप देखते हो कि आप तो बहुत ऊपर, इस संसार से बहुत दूर, लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में स्थित हो, जहां पर चारों लाल सुनहरी प्रकाश फैला है। उस प्रकाश के मध्य दो सितारों का महामिलन, आत्मा और परमात्मा का महामिलन, शिव बाबा की सर्व शक्तियां आप में भर रही है, समाती जा रही है। देखते जाइए शिव बाबा की शक्तियां कैसे आप में भरती जा रही है और आप गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं। बहुत गहरी शांति, कोई भी संकल्प नहीं, बिल्कुल एकदम शांत निश्चिंत। बस बाबा को और अपने आप को निहारते रहिए। बाबा से आती शांति, शक्ति और प्रेम को स्वयं में भरते रहिए, उसको अनुभव करते रहिए। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए अपनी भरकुटी में, अपने उसी शांत स्वरूप अवस्था में स्थित रहिए, उसी शांति का अनुभव करते रहिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने बोला है कि ऐसे अशरीरी स्थिति का अनुभव, आत्मिक स्थिति का अनुभव बीच बीच में हमको बढ़ाते जाना है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, हम अपनी पूर्णतः आत्मिक स्थिति और शांत स्थिति का अनुभव करते जाएंगे। और बाबा ने मुझ लिए बोला है कि देखो दुनिया में क्या होता है, लोग बाग धन के पीछे भागते हैं, जब धन चला जाता है उनका देवाला मार देते हैं तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, तो फिर लोग भगवान को दोष देते हैं। लेकिन क्या उसका जिम्मेवार भगवान है? नहीं, उसका जिम्मेवार हमारा ही कर्म है। तो हमने कोई न कोई ऐसा कर्म किया होता है कि जिसके कारण से ऐसी परिस्थिति समस्याएं आती है। तो हमको भी कोई बातें आती तो भगवान को दोष देने की बजाय, ज्ञान मार्ग को दोष देने के बजाय ये सोचना होता है कि हमारा कोई न कोई पास्ट का कर्म है, कोई भी कर्म है जिसके कारण से ये समस्या आई है, और उसको हमको बड़ी खुशी खुशी से पार करना है। क्यों? बाबा ने बोला है कि ये सोचना है कि अच्छा हुआ धर्मराज के डंडों से बच गए। धर्मराज के डंडे खाने पड़ते, बीमारियां आती, कोई बात आती है तो सोचो कि धर्मराज की सजाओं से हम बच रहे हैं। तो हर बात में एक पॉजिटिव सोच हमको अपनी रखनी है, क्योंकि बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है, बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान, कर्म फिलोसफी का ज्ञान, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान इतना अच्छी रीति से स्पष्ट कर दिया है कि उसके बाद हमारे अंदर कोई भी संकल्प, संशय या प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार हम मूंझ जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं। क्यों? जब हम अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं। द्वापर वो क्या कहते हैं? द्वोपुर। और द्वंद का मतलब भी क्या? जहां दो होंगे वहीं तो युद्ध होगा, अकेले में कैसे युद्ध होगा? तो जब हम भी मनमत और श्रीमत, श्रीमत और परमत इनको मिक्स कर देते हैं, तभी युद्ध होता है, तभी द्वंद होता है। और हमको क्या करना है? युद्ध करना है या विजयी बनना है? विजयी बनना है। तो बाबा ने विजय माला में आने का आधार क्या बताया? विजय माला में कैसे आएंगे? जब निश्चय बुद्धि होंगे, जब निश्चय बुद्धि होंगे और याद ऐसी होगी जो एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद नहीं आएगा। तो ऐसी एकाग्रता वाली याद, ऐसी निश्चय बुद्धि, ऐसा भाव पर निश्चय और ऐसी हमारी योग युक्त स्थिति होगी, तभी हम विजय माला में आ सकेंगे। क्योंकि तो विजय बनने का आधार ही क्या है? शक्ति, सामर्थ्य। कहीं भी विजय किस आधार पर मिलती है? जब आपके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो और दूसरा युक्ति। शक्ति और युक्ति ही विजय बनने का आधार है, चाहे दुनिया का युद्ध हो, दुनिया की बातें परिस्थितियां हो या ज्ञान मार्ग का हो। शक्ति और युक्ति के आधार पर ही विजय मिलती है। कई जगह आप लोगों ने युद्धों में देखा होगा, विशेष रूप से पानीपत का युद्ध आप देख लो, उसमें महाराणा सांगा क्यों आ रहे थे? उनके पास युक्ति नहीं थी। शक्ति तो थी, युक्ति नहीं थी। वो दूसरे की जो आगे जो बाबर वगैरह उनके पास जो युद्ध करने के लिए आए थे, तो उन्होंने ऐसा तोपखाना खाई वगैरह सब बना लिए थे, उन्होंने उसको देखा नहीं, कैसे इससे पार पाना उसको सोचा नहीं, केवल अपनी शक्ति के ही नशे में चूर रहा तो हार गया। सबको साथ लेके चला नहीं, इसलिए हार गया दूसरी बार भी। तो हमारे पास शक्ति होनी चाहिए और युक्ति भी होनी चाहिए। युक्ति क्या है? श्रीमत। जो बाबा ने हमको बताई है श्रीमत, वो है युक्ति। और शक्ति क्या है? याद की यात्रा। तो जितना हम याद की यात्रा अपनी बढ़ाते जाएंगे और बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में लाते जाएंगे, श्रीमत का पालन करते जाएंगे, उतना हम हर बातों में, हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर विघ्नों में विजयी बनते जाएंगे। तो हमको विजयी बनना है। हमको क्या बनना है? योगी, योद्धे नहीं बनना है, युद्ध करने वाले नहीं बनना है, लेकिन महारथी जरूर बनना है। योद्धे नहीं बनना है, लेकिन महारथी जरूर बनना है। तो महारथी योद्धे में क्या अंतर है? महारथी योद्धे में क्या अंतर है? महारथी तो युद्ध करते हैं, बातें तो आएंगी, बातों में फंसना नहीं है, बातों में रुकना नहीं है, उनको क्रॉस करना है, उसमें टाइम ज्यादा नहीं देना। बातें आई, क्रॉस किया, विजय बने, आगे बढ़ गए। तो वह महारथी योद्धा मतलब युद्ध करते रहे, करते रहे, करते रहे, उसे बहुत समय लगा देता है। और किसी भी चीज को यदि आप रस्सी को बार बार घिसते 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 रस्सी कमजोर हो जाती है, फिर टूट जाती है। तो ऐसे हम भी युद्ध करते 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 कमजोर बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाथ क्या होता है, याद की यात्रा में कब थकते हैं, युद्ध करने से। देहाभिमान आएगा, तूफान आएगा माया का, तो हम युद्ध करते रहते हैं। युद्ध नहीं करना, उसको उस पर विजय पाना है, क्रॉस करना है। देखो उस पर दो ही तरीके रहते हैं, आप उसको खत्म कर दो या तो आप क्रॉस कर जाओ। कुछ चीजें ऐसी होती जिनको समाप्त किया जा सकता है, कुछ चीजों को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो जिनको आप समाप्त नहीं कर सकते, जिनको परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको क्रॉस करना होता है, उनको छोड़ के आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि सब चीजों को मैं ठीक करके आगे बढ़ूंगा, कभी भी सब चीजें ठीक नहीं होती है। हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हम दूसरों को परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो कई जगह दूसरों को समझाना भी होता है, सुझाव भी देना होता है, लेकिन कई जगह अवॉइड भी करना होता है, छोड़ना भी होता है, उन्हीं फंस करके अपना टाइम समय शक्ति बर्बाद नहीं करना होता है। तो हमको आगे बढ़ना है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर के अवश्य आगे बढ़ना है, लेकिन लेकिन केकड़े जैसे नहीं। केकड़ा क्या होता है, ना खुद बढ़ेगा ना दूसरों को बढ़ने देगा, खींचेगा दूसरों को पीछे। तो हमको ऐसे नहीं बढ़ना, हमको फरिश्तों के जैसे बढ़ना है, फरिश्तों के जैसे उड़ना है। फरिश्ता खुद भी उड़ता है, उसके पीछे दूसरों को भी उड़ा के लेके जाता है। हाँ, उनको, क्योंकि हम सबको सबको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बाबा पे क्या बोलता है कि सबको ज्ञान दो भले ही, लेकिन ज्ञान मार्ग में कौन आएंगे, जो इस घराने के होंगे, जो दैवी कुल के होंगे, वही आएंगे। सब हमारा ज्ञान नहीं मानेंगे, लास्ट में शिव शिवा भगवान है वो तो मान लेंगे, लेकिन इस ज्ञान को सब नहीं मानेंगे, वही मानेंगे जो इस घराने के होंगे। लेकिन फिर बाबा क्या कहते हैं, सबको दो, देना सबको है, जो माने। हरेक का, देखो मैं फिर वही कह रहा हूं, हमारा काम क्या है, सुझाव दे दो, बात बता दो, फिर किसी को कोई नहीं सुनता है तो उसके पीछे अपनी बुद्धि को, अपने टाइम समय शक्ति को वेस्ट नहीं करो। क्योंकि हरेक की सामर्थ्य अलग अलग है, अपनी बुद्धि ग्रहण शक्ति अलग अलग है, उनका पद पुरुषार्थ सब कुछ अलग अलग है, लेकिन बाप का काम है पालना करना, लेकिन बच्चों को उनके भाग्य पर भी छोड़ना होता है। यदि बाप सोचे मैं पालना करूंगा, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अनुसार बच्चे चलेंगे, मेरे अनुसार बनेंगे, तो बाप सदैव जिंदगी भर परेशान रहेगा, मेरी बात नहीं मानते, मेरे कहे अनुसार नहीं करते, मेरे कहे अनुसार नहीं बनते। बाप का काम है शिक्षा देना, पालना देना, समझाना, लेकिन उनको उनके भाग्य पर छोड़ना भी बाप का काम है। नहीं छोड़ेंगे तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे। आपको अपना कर्तव्य करना है, उसके पीछे फंस के अपना समय शक्ति बर्बाद नहीं करना है। ये हमारा कर्तव्य है, उनको गाइड करना भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमको अपने ऊपर भी ध्यान रखना है, अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, साक्षी और साथी। बाबा भी हमको ज्ञान देता है, पूरा संगम युग ज्ञान देंगे, लेकिन जब संगम युग का अंत, कल्प का अंत आएगा, जब विनाश का टाइम आएगा, तो क्या बाबा ज्ञान देगा, साक्षी हो जाएगा। तब बाबा साक्षी क्यों हो जाएगा, कि बाबा ने सब समझा दिया है, अब हर एक का भाग्य, हर एक का पुरुषार्थ। तो ऐसे ही एग्जाम के टाइम पे बाबा साक्षी हो जाएंगे, तो ऐसे ही हमको भी साक्षी बनना हो और साथी बनना है। तो कई जगह हमको साक्षी होना पड़ता है, कई जगह हमको साथी बनना पड़ता है, बहुत सारे कार्यों में साथी बनना पड़ता है, कई जगह हम पुरुषार्थ भी मिलकर साथ साथ करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब तक वो ना आए मैं उसी को याद करते बैठा रहूं, जब तक वो ना आए मेरा योगी ना लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आए तो बहुत अच्छा है, दुनिया में क्या कहते हैं, आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। दुनिया में स्लोगन है कि आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, तो वो अपने हिसाब से कहते, लेकिन हमको ज्ञान के हिसाब से इस चीज को लेना है। आए तो बहुत अच्छा, आइए, स्वागत है आपका, नहीं आए तो आपके पीछे टू मच में नहीं जाना, अपनी स्थिति बना के रखना है। मेन चीज है अपनी स्थिति, क्योंकि अंत में हमें हमारी स्थिति ही काम आएगी और दूसरा कोई भी काम नहीं आएगा। दुनिया में कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना, लेकिन बाबा क्या कहता है, खाली हाथ नहीं जाना है, भर्तू होके जाना है। लेकिन साथ में क्या जाएगा, साथ में क्या जाएगा, गुण शक्तियां, हमारे पुण्य कर्म, हमारा दुआओं का खाता, जमा खाता, ये सब साथ में जाएगा। तो इनको बढ़ाएंगे तभी तो जाएगा, इनको अपने इकट्ठा करेंगे तब तो जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा था कि तीन खाते जमा करो। कौन कौन से तीन खाते बाबा ने बोले था? हाँ, तो आप किसी को भी बाबा का ज्ञान देते हो, उसका जीवन बनाते हो, उनको संतुष्ट करते हो, तो इससे क्या होता है, आपका जमा खाता बढ़ता है। किसी को सुख देते हो, मदद करते हो, तो उससे क्या होता है, दुआओं का खाता बढ़ता है। और जितना पर्सनल लेवल पर जो भी पुरुषार्थ करते हो, ज्ञान, योग, सेवा, उससे आपका जमा खाता, पुण्य खाता बढ़ेगा। अभी बाबा की याद, तो इसलिए हमको अपना खाता बढ़ाते जाना है। तो अभी बाबा की याद में हम 3 मिनट बैठेंगे, फरिश्ता स्थिति में अपने आप को स्थित करेंगे। सोचिए आप अपनी भरकुटी में स्थित हो, और आपकी शक्तियों किरणें आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मन एकदम बिल्कुल शांत है, आपके सिर के ऊपर ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे हैं, उनकी शक्तियों किरणें आपके ऊपर बरस रही है। आपके शरीर और आत्मा को पावन बनाती जा रही है। पूरे शरीर में आत्मा और शिव बाबा की शक्तियां फैल रही है। आत्मा और शरीर को पावन बनाती जा रही है। पूरा शरीर प्रकाश का बनता जा रहा है। एकदम हल्का होता जा रहा है। तन मन बिल्कुल हल्का बनता जा रहा है। तन मन बिल्कुल हल्का बनता जा रहा है, प्रकाश का बनता जा रहा है। आपको 2 बहुत अच्छे प्रकाश के पंख आ गए हैं। आपकी भरकुटी में आत्मा और आपका शरीर प्रकाश का चमक रहा है। के ऊपर बाबा किरणें पड़ रही है। और आप धीरे धीरे अब उड़ने लगे हो ऊपर की ओर, अपने पंखों को हिलाते हुए फरिश्ता बन करके बाबा से कंबाइंड होकर के उड़ रहे हो। आप बाबा से कंबाइंड हो, बाबा आपको लिए जा रहे हैं ऊपर प्रकाश की दुनिया में। आप उड़ते जा रहे हो, एकदम लाइट और लाइट बनते जा रहे हो, पहुंच जाते हो सुख समुद्र में बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा आपको पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। उसके मस्तक पर हाथ फिरा रहे हैं। आपके मस्तक पर चुम्बन करके गले लगा रहे हैं। ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। आप भी बाबा के प्यार में मगन होकर के बाबा को गले लगा रहे हो। चारों ओर सिर्फ सफेद सफेद प्रकाश, सुख संवतन में दो फरिश्तों का महामिलन, मुझ फरिश्ते और बाप दादा का महामिलन। बाबा ने दृष्टि दे करके एकदम लाइट माइट से भर दिया। संपूर्ण पावन फरिश्ता बना दिया और बाबा की उंगली पकड़ करके अब चल दिए हैं पूरे विश्व की परिक्रमा करने के लिए। पूरे विश्व को सकास देने के लिए हम पूरे विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं। पूरे विश्व ग्लोब को सकास दे रहे हैं। सभी जीवात्मा और प्रकृति को पावन बना रहे हैं। इस सृष्टि को स्वर्ग से नरक में परिवर्तित कर रहे हैं। आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान दे रहे हैं। उन्हें खुशी सुख शांति प्रदान कर रहे हैं। उनको भी फरिश्ता बना रहे हैं। सभी आत्माएं फरिश्ता बन करके उड़ते आ रही है ऊपर की ओर। आगे आगे बाप दादा और पीछे पीछे मैं, उसके पीछे बाकी सभी आत्माएं, सभी फरिश्ते उड़ते जा रहे हैं अपने घर परम धाम की ओर। अब सिर्फ शिव बाबा और बाप दादा दोनों ज्योति बिंदु रह गए हैं और हम भी ज्योति बिंदु बन गए हैं। धीरे धीरे लाल प्रकाश की दुनिया घर परम धाम में हम जा रहे हैं। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के लाल प्रकाश की दुनिया बहुत ऊपर पहुंच गए हम, जहां बहुत गहरी शांति है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, पूर्ण एकांत है। बस लाल लाल प्रकाश बिखरा है। दूर दूर तक लाल प्रकाश, उसके मध्य में स्थित ज्योति बिंदु शिव बाबा और उससे एकदम बिल्कुल सट करके उनको टच कर करके बैठी हुई मैं आत्मा और बाबा से मेरे ऊपर शक्तियां और प्रकाश बरस रहा है। मेरे अंदर शक्ति और शांति भरती जा रही। मुझे एकदम बिल्कुल हल्का लाइट माइट संपन्न बना रहा है। एकदम हल्का संपूर्ण पावन प्रेम सुख शांति शक्ति से भरपूर करता जा रहा है। बाबा का वो प्रकाश, लाल सुनहरी प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है और मुझे भरपूर कर रहा है। मैं बाबा से टच कर करके बाबा के प्यार में मगन, उनकी प्राप्तियों से भरपूर होता जा रहा हूं। अब स्वयं को भरपूर करके फिर वापिस धीरे धीरे आ रहे हैं नीचे अपनी देह में। धीरे धीरे नीचे उतरते जाइए, सुख संवतन को क्रॉस करते हुए फरिश्ता बन करके नीचे इस आकाश को क्रॉस करते हुए और नीचे धीरे धीरे आते हुए अपनी देह में स्थित हो गए। अभी आप अपने आप को इस देह में पा करके भी बहुत हल्का फरिश्ता स्थिति में अनुभव करते रहेंगे, अपनी भरकुटी में चमकती आत्मिक स्थिति में अपनी न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित करते रहेंगे। ओम शांति। तो अभी आज बाबा ने और क्या बोला, बाबा ने एक बात विशेष रूप से जो बताई है वह परिवर्तन शक्ति, क्योंकि परिवर्तन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि बिना परिवर्तन के कुछ भी नवीनता नहीं आती है। नवीनता का आधार है परिवर्तन। यदि ऐसे ही हम भी ज्ञान मार्ग में चलते रहे और अपने जीवन में हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया तो फिर कुछ तो बिना परिवर्तन के तो फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो हम कहते रहेंगे हम इतने साल हो गए, इतने पुराने हो गए, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परिवर्तन नहीं किया। और सबसे बड़ा परिवर्तन होता है मन का परिवर्तन। कपड़ों का परिवर्तन तो सन्यासी भी कर लेते हैं, स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं, तो कपड़ों का या स्थान का या तन का परिवर्तन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता। सबसे बड़ा परिवर्तन है मन का परिवर्तन। और हमारा जो ये मार्ग है इसमें सबसे जरूरी यही परिवर्तन है कि हम अपने मन को, अपने चिंतन को, अपनी धारणाओं को परिवर्तित करें, जो दुनिया वाली थी उनको बदले और जो बाबा कह रहा है वो करते चले, उनको धारण करते चले, तो तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हमारा समय सफल होगा। क्योंकि हम देखते हैं ज्ञान मार्ग में आना अर्थात सब चीजों का परिवर्तन होना, ऑल टू ऑल, कि जब हम वर्तमान में अपना सब परिवर्तन करेंगे तब ही संसार परिवर्तन होगा, कि हमारे परिवर्तन के आधार से ही संसार परिवर्तन होता है। तो ये हमको निमित्त बनना है, बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। बाबा विश्व परिवर्तक है, लेकिन बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, कि बाबा बिना हमारे कुछ नहीं करते, तो बाबा हम बच्चों को साथ लेके ही करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा को हमको ही देना है, प्राप्ति भी तो हमको ही करनी है, तो लेकिन परिवर्तन भी हमको करना है। तो आज का जो वरदान था उस परिवर्तन शक्ति को याद रखेंगे, हमारे देखने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, पहनने का स्टाइल, टोटली सब स्टाइल को चेंज कर देना है, लाइफ स्टाइल चेंज कर देना है। तो दुनियावी स्टाइल सब बदल देने हैं और रूहानी स्टाइल धारण कर लेना है। दुनिया वाले धरती पे रहते हैं और हमको अर्श पे रहना है, आकाश में रहना है। दुनिया वाले दुनियावी बातें सोचते हैं, दुनिया वाले देह को देखते हैं, लेकिन हमको आत्मा को देखना है, रूहानियत पूर्ण सोचना है। तो अभी टोटली परिवर्तन हमको करना है, तो इसी परिवर्तन को लेकर के हम लास्ट में अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर हम पूर्ण करेंगे। फिर बाद में आप लोगों का 15 मिनट ब्रेक है, फिर आप चाय पानी वगैरह पी करके आगे का सेशन करेंगे। तो अभी 2 मिनट अनिल भाई ज्ञान सरोवर मिनरल वाटर डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं, लगभग 26 साल से ज्ञान सरोवर में है, 3 साल और उसके पहले से 29 साल, 30 साल लगभग ज्ञान में हो गए। तो अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे फिर समाप्त करेंगे। अभी देखिए अपनी भरकुटी में चमकती हुई आत्मा को, भरकुटी के बीच में आत्मा चमक रही है, और सिर के ऊपर से शिव बाबा की शक्तियां आत्मा के ऊपर पड़ रही है। पूरी आत्मा और शरीर में शक्तियां समाती जा रही है, शिव बाबा की शक्तियां हमारे ब्रेन का शुद्धिकरण कर रही है, उसको डिवाइन बना रही है, आत्मा को शुद्ध कर रही है, उसको पावन बना रही है, आंखों को परिवर्तित करके उनको रूहानी बना रही है। मुख को परिवर्तित कर करके उसको हर्षित मुख बना रही है। पूरी बॉडी में बाबा की शक्ति किरणें फैलती जा रही है, उसको एकदम लाइट माइट संपन्न बना रही है, प्रकाश पूर्ण कर रही है, एकदम हल्का बना रही है। और अभी आप बन चुके फरिश्ता, और आपसे निकल निकल के किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। पहले आपके आसपास किरणें फैलती जा रही है, पूरे हॉल में, पूरे ज्ञान सरोवर में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। ये बाबा की शक्तियां आपके ऊपर और आपसे पूरे विश्व में, जो पूरे संसार का परिवर्तन कर रही है, सभी आत्माओं का जीवन परिवर्तन कर रही है, प्रकृति का परिवर्तन कर रही है। इसी विश्व परिवर्तन की स्थिति में स्थित होकर के आप पूरे विश्व को सकाश देते रहिए। पूरा विश्व भी लाइट का गोला बन रहा है। सभी सुख शांति न्यारी प्यारी ऐसी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति।